तिलावत आपने सुनी। आइए फिर इन आयात को पढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आयात में हमें क्या कह रहे हैं और हमारी इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी के लिए कौन से अहम उसूल जो है वो इनसे हमें मिल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाहा मअ अस्साबिरीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि एक तरफ मुसलमानों को मनसबे इमामत पर फाइज किया गया, अब दूसरी तरफ जो है मनसबे इमामत की मुश्किलात जो है ना उनका हल और इलाज बताया जा रहा है कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने अहम मकाम पर फाइज किया है, तहवीले किबला के साथ साथ तुम्हें उम्मते वस्त बनाया, तुम्हें इमामत के लिए तैयार किया, तो अब क्या है कि ऐसा होगा कि इस रास्ते में बेशुमार मुश्किलात आएंगी और बहुत सी मुसीबतें पेश आएंगी। और ये बात जो है ये हक है कि लोग तुम पर बातें करेंगे, जैसे किबले की तब्दीली पर जो है वो बहुत से बहसें थी और बहुत से झगड़े थे, और अब तुम क्या हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के वारिस हो, अब तमाम वो खसूसियात तुम्हें नजर आनी चाहिए, तो अब क्या है कि इस चीज की वजह से लोग इनके मुखालिफ हो गए, गैज़ो गज़ब उन पर जो है वो ज्यादा आने लगा। तो एक तरफ से कुरैश जो थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को मक्का से निकाल बाहर किया, और उनका ये ख्याल था कि ये दावत जो बहुत अजनबी है, जो बहुत हल्की सी है, ये क्या होगा, ये दब जाएगी। दूसरी तरफ मदीना में जो यहूद थे उन्होंने भी आपके खिलाफ जो थी वो बातें करनी शुरू कर दी और जो है वो बुरा भला कहना शुरू किया। तीसरी तरफ मुसलमानों के अंदर खुद एक मुनाफिकीन का ग्रोह पैदा हो गया, और क्या था कि अब मुसलमान जो थे हर वक्त मुख्तलिफ मसाइल और परेशानियों में दो चार रहने लगे। तो अब जो है उन परेशानियों से निकलने का तरीका बताया गया, जैसे गज़वे बदर भी जब हुई तो उसमें क्या था, यहूद थे मदीना के और मुनाफिक थे मदीना में और कुरैश थे मक्का के, इन सब ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जो थी वो साजिश की कि ये जो मिल्लत इब्राहिमी वाले हैं, ये जो एक मुस्तकिल जमात हैं और ये जो किबला इब्राहिमी के दावेदार बनकर उठ रहे हैं, अब इनको जो है उठने से पहले ही तोड़ दिया जाए, है ना। तो मुसलमानों पर अब आजमाइशों का दौर शुरू हो रहा है। तो ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो बताया कि तुमने मुश्किलात और मसाइब जो है उसमें दब नहीं जाना, गिर नहीं जाना, मिट नहीं जाना, बल्कि क्या करना है कि उनका इलाज करना है। और उनका इलाज क्या है, पहली चीज के ईमान होना जरूरी है। अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों पहले अपने दिलों का जायजा लो, अपने जो है वो जिस्म जो है वो कहीं ऐसे तो नहीं कि बर्फ के तोदे बन गए, कहीं ऐसे तो नहीं कि बर्फ की सिले बन गए, कहीं ऐसे तो नहीं कि जिस्म तो है पर उसमें रूह ही नहीं, हरकत ही नहीं है। ईमान तो हरकत का नाम है, ईमान तो जिंदगी का नाम है, ईमान तो अपनी कुव्वतें और सलाहियतें जो हैं वो अल्लाह के नाम कर देने का नाम है। तो ऐ ईमान लाने वालों क्या करना, इस्तईनू बिस्सब्री, सब्र से मदद लिया करना। तो पहली चीज जिसकी तरफ इशारा किया गया वो क्या है कि सबर है, और सबर जो है वो क्या है कि इंसान अपने आप को रोक ले, इंसान अपने आप को काबू में रखे, डट जाए, अपने अमल से हिम्मत का जुर्रत का इजहार करे। और शरीयत में से मुराद ये है कि ईमान और नेकी पर कायम रहना, और इनके फैलाने में जिस दीन पर वो ईमान लाए हैं उनके फैलाने में रब की रजा के लिए जो है वो कोशिश करना। इस तरह अल्लाह की राह में मुसीबतों को, तकलीफों को और मुश्किलों को बर्दाश्त करना जो है वो सबर कहलाता है। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत लुकमान में, हकीम लुकमान जब अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, आयत नंबर 17 है सूरत लुकमान की, कि सब्र करना जो तुझ पर मुसीबत आ जाए, बेशक ये बहुत ही उलुल अज़्मी के कामों में से है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ये फरमाते हैं वला नजीन लजीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और हम साबिर लोगों को उनके अच्छे अमाल का बेहतरीन बदला जो है वो देंगे, कि जो लोग सबर करेंगे तो बदला देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये तसब्बरु युसब्बिरुहुल्लाहु वमा उतिया अहदुन अता अन खैरम वा औसा मिन सब्र। ये बुखारी की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सबर की कोशिश करेगा अल्लाह इसको सबर देगा और सबर से ज्यादा बेहतर और बहुत सी भलाइयों को समेटने वाली कोई और खूबी नहीं है, कोई और बख्शिश नहीं है। तो सबर जो है वो बहुत जरूरी है। सबर जो है इससे मुराद क्या है? कुरान और सुन्नत की सलाह में सबर के 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 शोबे हैं। पहला शोबा क्या है कि अपने नफ्स को हराम और नजायज चीजों से रोकना। दूसरे ये है कि अतात और इबादत की पाबंदी पर मजबूर करना। तीसरा ये है कि जो मुसीबतें और तकलीफें हैं उन पर सबर करना, यानी जो मुसीबत आ गई उसको अल्लाह की तरफ से समझना और सवाब का उम्मीदवार होना, और मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकालना कि जिससे जो है ना शुक्री हो या बेसब्री हो। तो ये तीनों चीजें जो है ना सबर के फराइज में दाखिल हैं। नंबर 1 क्या है कि नफ्स हराम और नाजायज चीजों से रुक जाए। नंबर 1 हराम से रुक जाना। नंबर 2 अतात जो है उस पर अपने नफ्स को मजबूर करना, उसकी पाबंदी पर, जो भी अल्लाह की इबादत है ना जो हम पे फर्ज है उसकी पाबंदी पर मजबूर करना। और तीसरा क्या है कि जो मुसीबत तकलीफ परेशानी आई उस पर सबर करना। अच्छा, अब हम क्या समझते हैं, हमारे यहाँ अवाम ज्यादातर जो तीसरा डिपार्टमेंट है ना, तीसरा शोबा, उसको सबर समझती है कि जो मुसीबत आई है तो उस पर क्या है कि सबर करना है। जो पहले 2 डिपार्टमेंट है ना उनको सबर में शामिल ही नहीं समझा जाता। और पहले 2 क्या है? नंबर 1 बुराइयों से, हरामकारियों से, जिनाकारियों से, जो भी बेहयाई के और जो भी हराम काम है उनसे अपने नफ्स को रोक लेना, पकड़ कर, जैसे घोड़ा है ना दूसरी सिमत जाना चाहता है तो उसकी लगाम पकड़ के उसको रोक लेता है जो उसका घुड़सवार है। इसी तरह नफ्स जो है ना ये घोड़े की तरह है, और ईमान जो नफ्स को हमने रस्सी जिससे बांधा है ना वो ईमान है, ईमान की रस्सी है, और जिस जगह बांधा है वो इस्लाम की खूंटी है। तो ईमान की रस्सी से इस्लाम की खूंटी पर लाकर इस नफ्स को बांध दिया, और अब इस नफ्स को हमेशा ये बात समझाते रहना है कि तूने हराम काम नहीं करने, और हराम कामों पे दिल बहुत जाता है। मसलन किसी की गीबत करते हैं ना, बड़ा मजा आता है। हाँ वो है ही, कोई बात आके करता है ना बेचारा दुखावा और सतावा के उसने मेरे साथ ये ज्यादती की, तो हम कहते हैं हाँ वो है ही बुरा, मुझे तो पहले ही अंदाजा था, मैं तो जानती हूँ ऐसा ही होता है, ये है ही ऐसा है ना, और उसमें नमक मिर्च डालकर और आग जलाते हैं, जलती पर तेल डालते हैं, वो शख्स और फिर भड़ास निकालता है, हम भी उसके साथ शामिल हो गए। और उस वक्त अब ये हराम काम जो गीबत का कर रहे थे, अगर अपने नफ्स को लगाम पकड़ कर रोके, या तो उस मसले, गीबत कब जायज है, या तो उस मसले का हल निकालें, उस फर्द को समझाएं जिस जो जालिम है ना, और वरना ये कि मतलब कोई तलाफी की कोशिश करें, और वरना फिर हमें जबान की हिफाजत करनी है। और ये क्या, ये भी सबर है। तो हम सबर किसको समझते हैं कि जो मुसीबत आ गई, ये भी सबर है कि हराम से रोकना। इसी तरह अतात का नफ्स को मजा चखाना, बंदगी करनी ही करनी है, अब नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, उठने को दिल नहीं चाह रहा, वुजू को दिल नहीं चाह रहा है ना, तो अतात का मजा चखाना, अतात कर उसको मजबूर करना। बाज़ ये होता है कि हाँ नमाज तो पढ़नी है, कजा भी हो रही है, पर मेकअप ही खराब हो जाएगा है ना, कपड़े ही ना खराब हो जाए पानी के छींटे लग के, नींद ही ना खराब हो जाए उठूंगी तो है ना, नहीं ए नफ्स मैं तुझे रब की अतात का मजा चखा के रहूंगी, मुझे अब किसी चीज का कोई गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है, एक अल्लाह की रजा का एहसास। और तीसरी चीज क्या है कि जो भी मुसीबत पड़ जाए, इसीलिए जो है कहने वाले क्या कहते हैं कि अगर तबीयत के तकाजे से रुक जाए तो ये भी सबर है, और पेट और शर्मगाह की जो ख्वाहिश है हद से बढ़ रही है, हदूद के अंदर नहीं है, उस पे रुक जाए तो ये भी शर्म, जो ये भी सबर है, इफ्फत इख्तियार करना, पाकी इख्तियार करना, है ना। जायज जो है वो तो पूरी की जा सकती है, नजायज जो है ये भी जो है वो उस पर हम रुक जाए तो क्या है कि ये भी सबर है। इसी तरह अगर नेकियों में या अल्लाह ताला के दीन के रास्ते में हम मुशक्कत उठाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये भी सबर की किस्म है। इसी तरह गुस्से को दबा ले, गुस्सा हराम है, इसको हिल्म कहते हैं, ये भी सबर है कि गुस्सा दबा लिया। इसी तरह किसी ने मुझे कोई अपना राज बता दिया, और बता तो बाजू का बताने वाला ना इधर उधर नहीं देख, इधर उधर देखता है, मुंह से नहीं कहता ये मेरा राज है। इधर उधर देखने का मतलब यह है कि वो राज बताना चाहता है, वो देख रहा है कि कमरे में कोई नहीं है, वो आपके पास चला आया, वो आपसे ऐसी बात करना चाहता है कि दूसरा को ना बताई जाए। तो अब उस राज को पोशीदा रखना भी सबर है, लेकिन हम कहते हैं कि राज ही वो राज है जो बता दिया जाए, और बताने वाला कहता है बस तुम्हें बता रहा हूं किसी को नहीं, और सुबह होते ही बात सारी जो है ना सबके इल्म में चली जाती है, यानी हमारा पेट फूलने लगता है ना। औरतों का पेट कहते हैं ज्यादा ही हल्का होता है। तो राज की हिफाजत भी सबर है। इसी तरह जायद जरूरियात जो है बस उनको पूरा करना और उससे आगे ना बढ़ना, ये भी सबर है, जुहद इख्तियार करना। इसी तरह जो है थोड़ी चीजों पर कनात कर लेना, मुतमिन हो जाना, ये भी सबर है। तो यूं देखें तो सबर की बहुत सी हमें मिसालें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इस्तईनू बिस्सब्री, कि तुम सबर से काम लिया करो। तो सबर से काम लेना है, जिंदगी के तमाम मामलात में सबर से काम जो है वो लेना है। फिर फरमाया वस्सलाह, और नमाज से, मुश्किलात और मुसीबतों में नमाज का सहारा लिया जाए। और सिर्फ 5 वक्तों की नमाज ही मुराद नहीं है, फौरन जब भी कोई मुसीबत आई तो फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था, इजा हजबहु अमरुन फजिया इला सलाह। रसूल अल्लाह को जब कोई जरूरत पेश आती, जब कोई मुसीबत आती, तो नमाज के लिए रुजू करते, नमाज के लिए खड़े हो जाते। तो ये आपकी आदत थी, जब तेज हवाएं चलती देखते, जब बादल देखते, आंधी देखते, कोई तकलीफ आती मस्जिद नबी का रुख करते और नमाज के लिए खड़े हो जाते। तो जब भी कोई मुसीबत आए तो क्या करना चाहिए कि नमाज के लिए खड़े हो जाना चाहिए, 2 रकत नमाज, दुआए हाजत। नमाज क्या है, इससे क्या होता है कि एक इंसान मोमिन के अंदर एक रूह पैदा होती है, एक उसको जिंदगी मिलती है, राह हक में जो मुश्किल और तकलीफें आ रही हैं फिर वो उसको बर्दाश्त करने की उसके अंदर ताकत आती है, और मुसीबतों से शिकस्त नहीं खाता, फिर मुसीबतों पर फतह पाता है और उसको मकामे कुर्ब हासिल होता है, उसको अल्लाह की मैयत नसीब होती है। तो अल्लाह ताला ने यही कहा कि जब मुसीबत आए, जब तकलीफ आए, जब परेशानी हो, तो नंबर 1 सब्र करना है और नंबर 2 नमाज पढ़नी है। अच्छा, ये दो कोई मुख्तलिफ चीजें नहीं है, सब्र दिल की अंदरून की कैफियत का नाम है और नमाज जिस्म के अज़ा का सबर है ना। एक ही चीज के दो मुख्तलिफ जो है वो नाम है, या दो मुख्तलिफ अल्लाह को याद करने के तरीके हैं, या क्या है कि ये दो इलाज हैं, है ना। नमाज भी तो सबर है ना, अपने नमाज के लिए अपने जिस्म को उठाना, इस सरकश घोड़े को उठाना, नफ्स जो सरकश घोड़े की तरह है, काबू में आता ही नहीं, जैसे होता है ना मूज और घोड़ा रस्सी तोड़ा कर भागना चाहता है, नफ्स की भी यही हालत है, इधर उधर, बस अभी थोड़ी देर में पढ़ती हूं नमाज, बस ये जरा हंडिया भून लूं, ये जरा थोड़ा सा फोन जरूरी है ये कर लूं, ये जरा सा जो है ना ये मैं मसाला पीस लूं, बस थोड़ा सा जरा आंख लगा लूं, कमर बड़ी थकी हुई है ना। और क्या हुआ कि नमाज कजा हो गई, तो उसको उसी वक्त नहीं, बस अभी उठना है और ये करना है, तो ये क्या है कि नफ्स पर काबू पाना है। तो दुनिया का दुश्मन हो या हमारा अजली और अब्दी दुश्मन शैतान हो, तो इनसे बचने का तरीका क्या है, ए ईमान लाने वालों, सबर और नमाज से मदद लिया करो। और हमें जब मुश्किल आती है, परेशानी होती है, कोई खुदा ना खास्ता बीमारी या एक्सीडेंट या कोई मुआशी मसला आता है, तो हम कहते हैं क्या करें ना, कोई शॉर्टकट बता दे, क्या करें ना। अल्लाह ताला ने जगह जगह हमारे हमें परेशानियों का इलाज बताया है, सबर से और नमाज से मदद लो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह जो है वो सबर करने वालों के साथ है। तो अब यहां पर जो है ये अल्लाह की मदद कैसे मिलेगी, अल्लाह कैसे मिलेगा, है ना। दुनिया की एक छोटी सी चीज का मिलना इतना मुश्किल हो जाता है, तो अल्लाह कैसे मिलेगा, उसका साथ कैसे मिलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं, सबर करते हैं, मैं उनके साथ होता हूं। तो यहां पर जो बात बताई जा रही है, साबिरीन, जो साबित कदम रहते हैं, जो डट जाते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, फिर भागकर इधर और उधर जो है वो नहीं होते। जैसे हजरत सुफयान बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि काला कुल तु या रसूल अल्लाही कुल लि फिल इस्लामी कौलन ला असलु अनहु अहदन गैरक, काला कुल अमन तु बिल्लाही सुमस्तकिम। इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया कि मैंने रसूल अल्लाह से पूछा कि इस्लाम के सिलसिले में कोई जामे बात बताएं, कि फिर किसी से और मुझे कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। आपने फरमाया कि कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर जम जाओ, कितने ही हालात क्यों ना खराब हो जाएं। दुनिया और आखिरत की कुंजी क्या है, कि फिर इंसान जो है वो उस पर जम जाए, इबादत जो कर रहे हैं उस पर जम जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को अमल बहुत पसंद है जो खा थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी से कहा कि फलां की तरह ना हो जाना जो पहले तहज्जुद के लिए उठा करता था, फिर उसने उठना छोड़ दिया। इस्तकामत, तो अल्लाह न सिर्फ नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं है, इस्तकामत दिखाने वालों के साथ है, जो इस्तकामत का पहाड़ बन जाते हैं। वला तकूनू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन, और तुम ना कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा, बल अहया वला किल्ला तशउरून, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं और तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर ही नहीं है। और इंसान जो इस दुनिया में आता है, उसकी हमेशा की जिंदगी का, लामुंतहाई जिंदगी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और वो जिंदगी क्या है, हम ये समझते हैं कि मर गए तो गए, बहुत परेशान होते हैं तो कहते हैं कि मर जाए ना किसी तरह, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मर गए तो जिंदगी खत्म। हमारी जिंदगी के तीन दौर हैं, एक इस मौजूदा दुनिया की जिंदगी का दौर है, और ये दौर जो है ये सबसे मुख्तसिर है लेकिन सबसे अहम और नाजुक है। आइंदा आने वाले जो दो दौर हैं वो इस दौर पर डिपेंड करते हैं। दूसरा दौर कब्र का दौर है, जिंदगी है वहां पे भी। हम ये समझते हैं ना कि मर गए और खत्म, लेकिन क्या है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागीचों में से या तो एक बागीचा बन जाती है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। तो कब्र में भी इंसान को उसके अमलों के मुताबिक जजा या सजा मिलती रहती है और एक जिंदगी का सिलसिला जारी रहता है। तीसरा और आखिरी दौर जो सबसे बड़ा दौर है वो है जो कयामत के बाद शुरू होगा, जो आखिरत का है, फिर या जन्नत है फिर या जहन्नुम है। तो पहली बात, अब अपने दिलों को ये दिलों में बिठाएं और जहनों में इसको मजबूत करें और अपने दिले नादा को ये समझाएं कि जो दुनिया में एक दफा आ गया तो अब हमेशा की उसके लिए एक जिंदगी है, यानी ये मौत मौत नहीं है। समझ आई ये बात। अच्छा, दूसरी बात कि जो लोग भी मरते हैं तो उसमें बाज लोग तो जो है वो अंबिया हैं, जहर वो नेक लोग हैं, और सबसे ज्यादा जिंदगी भी उनकी अच्छी और सबसे ज्यादा मौत भी उनकी अच्छी। फिर उसके बाद जो है, और जैसे सालहीन हैं, शोहदा हैं, तो इस्लामी रवायात की रूह से जब मरने वाला मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो है क्या है कि उसको बरजख मिलेगी, उसको कब्र मिलेगी, और कब्र में फिर वो अजाब या सवाब जो है वो महसूस करेगा। तो अब यहां पर भी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह की राह में मर जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहया उन, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर ही नहीं है। तो कब्र की जो जिंदगी है उसमें है तो सभी जिंदा, लेकिन एक जिंदगी का दर्जा आम लोगों को हासिल है और एक खास लोगों को हासिल है। तो अब यहां पर शोहदा का जिक्र हो रहा है कि जो ऐसे लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, वो कत्ल कर दिया जाए, तो ये कहना ठीक नहीं है कि वो मर गया, बल्कि क्या है कि उसकी मौत दूसरे आम मुर्दों की सी मौत भी नहीं है। क्योंकि अब क्या है कि शहीद जो है उसने तो एक जिंदगी उसको मिल गई है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और क्या है कि किस शान से उठी है शहीद की मौत, जमाना पीछे चले और सर झुका के चले, है ना। शहीद की जो मौत है वो बड़ी ही अहम है और उसकी कुर्बानी जो है वो बहुत ही कीमती है। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो अल्लाह के रास्ते में दे दी और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने इस्तकामत दिखाई, तो क्या है कि अब तुम उनको मुर्दा भी ना कहो, ये ना कहो कि वो खत्म हो गया, बल्कि क्या है कि वो तो जिंदा है। फिर इसी तरह सूरत आले इमरान में आयत नंबर 169 में अल्लाह ताला कहते हैं, वला तासबन अल्लजीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता अमवातन बल अहया, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उनको मुर्दे ना ख्याल करो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। फिर आप देखें कि हमें अहदीस से भी पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहदा की रूहें सब्ज परिंदों के जिस्म में होती हैं और इनके लिए अर्श के साथ कुछ कंदीलें यानी लैंप लटकी हुई हैं। ये रूहें जन्नत में जहां चाहती हैं सैर करती फिरती हैं, फिर इन कंदीलों में वापस आ जाती हैं। तो जो है एक हदीस से हमें ये भी पता चलता है, ये मुस्लिम की हदीस है, और एक हदीस से ये भी पता चलता है कि फिर वो आके ना फिर आकर बैठ कर ना उसपे झूले जैसे लेती हैं। तो फिर अल्लाह उनसे पूछता है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, तो कहते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है शहीद के हमें दुनिया में एक दफा फिर भेज कि हम फिर से तेरे रास्ते में जिहाद करें और फिर से शहीद होना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, मेरे रा हाँ जो एक दफा आ जाता है तो वो वापस नहीं भेजा जाता, वैसे कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, है ना। तो शुहदा जो हैं इनका बड़ा मकाम है, और ये शहादत की जिंदगी, शहादत की जिंदगी और शहादत की मौत तो बड़े नसीबों को मिलती है। और आप देख लें कि कई कई ऐसा जो है वो शुहदा की लाशें कहीं पड़ी भी होती हैं तो उनके जिस्म से खून का निकलना, उनकी लाशों से खुशबू का आना, अफगानिस्तान के जिहाद और कश्मीर के जिहाद में ऐसे बहुत से वाकयात हमें जो है वो मिलते हैं। और आपको ये भी पता है कि हजरत एक सहाबी थे, हजरत हंजला रजी अल्लाह हो, उनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है, गसीलुल मलाइका, जिन जिनको मलाइका ने गुसल दिया। उनकी नई नई शादी हुई थी और मदीना में आवाज लग रही थी कि निकलो जिहाद के लिए, ना गजवाए उहद सर पर था, और नई नई शादी हुई थी, अपनी बीवी के साथ हम आगोश थे, बीवी के साथ थे बिस्तर में, उसी हालत में उठे और मैदान में गए और शहीद हो गए। इतनी देर भी ना की के थोड़ा गुसल कर लें या कुछ और देर, तो जब वो शहीद हो गए तो जैसे मैदाने जो जिहाद था उसमें आप लाशों को देख रहे थे, शहदा की लाशों का मुआयना कर रहे थे, हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु की लाश कहीं नजर ना आई, ना आप जिंदों में नजर आए और ना ही आप मुर्दों में। फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा कि आपकी लाश जो थी वो जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और उसमें से पानी के कतरे गिर रहे थे। तो फिर आपने कहा कि इसकी बीवी को बुलाओ, इससे पूछो कि क्या बात है। तो बीवी ने बताई सारी बात, तो आपने फरमाया कि इसको ना फरिश्तों ने गुसल दिया है। तो उनका लकब ही गसीलुल मलाइका मशहूर हो गया। तो सहाबा तो ऐसे नेकियों में सबकत ले जाते थे, इतनी जल्दी दिखाते थे, इतनी तेजी दिखाते थे। तो ये है कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये कदम कदम बलाएं ये सवादे कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। तो अल्लाह ताला कहते हैं सबर तो ये है कि तुम अपनी जाने जो है वो अल्लाह की राह में ही दे दो, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में तुम अपनी जाने भी दे दो तो फिर भी ये है कि हक अदा ना हुआ, और जो अपनी जाने दे दें तो उन्हें मुर्दा न कहना, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं। वला तशऊरून, और तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर भी नहीं है। फिर फरमाया मुसलमानों को अल्लाह ताला जो है वो ये बता रहे हैं कि तुम्हें आजमाइशें आकर रहेंगी, जो आने वाली मुसीबतें हैं अल्लाह ताला ने उनमें से चंद एक जो है उनका उनवानात का जिक्र किया है, उनको जो है वो अजमाली इशारा दिया है, और वो क्या है, वला नब्लुवन्नकुम बिशय मिनल खौफी, हम जरूर तुम्हें आजमा कर रहेंगे। अब देखे लाम भी है और नूने ताकीद भी है ना, इतना ही काफी था कि तुम्हें आजमाएंगे, जरूर बस जरूर तुम्हें आजमा कर रहेंगे, किससे, नंबर 1 खौफ से। और आपको पता ही है कि رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ ان آزمائشوں سے کتنا زیادہ جو ہے وہ آزمائے گئے. نمبر ون خوف, نمبر دو والجوعی بھوک, نمبر تین مالوں کا نقصان, ونقص من الاموال اور والانفس اور جان, جانوں اور مالوں کا نقصان, والثمرات اور آمدنیوں کا گھاٹا, وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائشیں جب صحابہ پر آئیں تو کیسے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. مدینہ میں ہر وقت جو ہے وہ ہنگامی صورتحال رہتی تھی, ہر وقت خوف کی کیفیت رہتی تھی کہ کہیں مشرک نہ آ جائیں, کہیں یہودی نہ حملہ کر دیں. اور ایک چھوٹی سی ریاست, چھوٹی سی ریاست اور ارد گرد سے دشمن اکٹھا ہو کر جو ہے وہ ہر وقت جو تھا بڈلاتا رہتا تھا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا, اپنے حجرے میں تھے, آپ نے فرمایا کاش آج کوئی رجل سواہلے جو ہے وہ آتا اور پہرا دیتا کہ میں سو سکوں, کیونکہ آپ کو جاگتے ہوئے کئی راتیں ہو گئی تھی. یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہتھیار لگا کر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں, آپ سو جائیں. چنانچہ اس طرح آپ نے آرام فرمایا. بخاری کی حدیث ہے. آپ نے اس وقت کہا تھا کاش کہ کوئی رجل سواہلے آئے, اور آپ نے بلایا نہیں تھا کسی کو. حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ کہیں دشمن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے, ہتھیار لگا کر آ کے پہرے دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے جب ہتھیاروں کی آواز سنی تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے, تو آپ نے فرما, انہوں نے صحابی نے کہا کہ میں. تو اسی سے ان کا لقب رجل سوالے بھی مشہور ہو گیا کہ نیک سوالے آدمی کے جو کوئی پہرا دے. اور بعض اوقات جیسے ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں نا, بنا کہے بچے کوئی کام کر دیں, آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو چائے کی ایک پیالی کی طلب ہو رہی ہے, بنا کہے بچہ آپ کو اٹھ کر پکا کر دے دے, تو کتنی آپ کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا. کوئی اور ضرورت ہے, آپ کے شوہر آپ کی پوری کر دیں, تو کتنی قدر ہوتی ہے, کتنی محبت آتی ہے امڑ کر. ماں باپ جیسے آپ دور بیٹھے ہیں, دور ہیں وہ پاکستان اور انڈیا میں, اور ان کو اندازہ ہے کہ میری بیٹی کو کیا چیز پسند ہے اور کیسی پسند ہے, بنا کہیں وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے نا, تو کتنی زیادہ محبت کے جو ہے وہ چشمے ابلنے لگتے ہیں نا, پھوٹنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجل سوالے کا لقب دے دیا. اسی طرح ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے, پھر وہ اسی آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا, یعنی ایک آواز کہیں سے بڑی خوفناک آئی تو مدینہ کے مسلمان بہت پریشان ہوئے اور اٹھ کر جانے لگے. جب جانے لگے تو آپ نے لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ادھر سے واپس آ رہے ہیں, یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام سے پہلے ہی اس آواز کی طرف چلے گئے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے. پھر آپ نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. اسے کہتے ہیں قائد, اسے کہتے ہیں لیڈر. ہمارے قائد کیسے ہیں کہ جب گلیوں میں جو ہے وہ عوام کا قتل ہوتا ہے تو ہم لندن میں ہوتے ہیں اور ہم امریکہ میں ہوتے ہیں, ہے نا, تو عوام جو ہیں وہ مر رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو لیکن اسلام کے جو قائد تھے وہ کیا تھے, وہ خود آگے آ کے سینہ سپر ہوتے تھے. آج کے لیڈر میں اور اس زمانے کے لیڈر میں یہی فرق ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ آج مسلمانوں کے حالات جو ہے وہ بدل نہیں رہے. تو مسلمانوں کو اچھے لیڈروں کی ضرورت ہے جو با عمل ہوں, جو قول کے اور عمل کے غازی ہوں. اسی طرح آج دیکھیں مسلمانوں پر کیسے خوف کی کیفیت ہے نا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, کتنے مسائل ہیں جس میں مسلمان جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں. کبھی آپ جو ہیں وہ کشمیر کو دیکھتے ہیں, کبھی افغانستان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بیوہ ہے اور کوئی جو ہے وہ جو ہے یتیم ہے, اور وہ خوبصورت پہاڑ اور وہ خوبصورت وادیاں اور وہ خوبصورت حسن جو جہاں جو افغانستان کے کوہساروں میں تھا, آج وہاں سے دھواں نکلتا ہے, آج وہاں زخمی ہیں, آج وہاں خون ہے, آج وہاں چیخیں ہیں, آج وہاں آہیں ہیں, اور ایک خوف ہے مسلمانوں پر. پھر کشمیر کو دیکھ لیں, ہے نا, ابھی ٹرین کا تازہ واقعہ جو ہوا ہے, ایک آدمی رو رہا تھا کہ میں نے 5 لاشیں میں اپنے گھر کی لے اٹھا کے لا رہا ہوں نا, تو یہ کیسا سمجھوتا تھا, یہ کیسی سمجھوتا ایکسپریس تھی. پھر آپ دیکھیں عراق کو دیکھیں, کیا حال ہے آج عراق کا. اور پھر آپ شام کو دیکھیں کہ وہاں ایک ڈر ہے, پھر آپ ایران کو دیکھیں, پھر ایک پاکستان کو دیکھیں کہ ہر وقت ایک خوف ہے مسلمانوں پر. कि ये कर दो वो कर दो, सरहद दे दो ये मदद कर दो, ये कहना मान लो आका का सरकार का, वरना ये ना ये ना ये ना कहीं हो जाए, है ना। तो अब क्या है कि खौफ उस जमाने में भी था आज भी है, मंडला रहा है ना, लेकिन उस जमाने में जो है मुसलमानों ने सबर से और नमाज से मदद ली, तो आज भी इसका यही इलाज है। दूसरा है भूख। उस जमाने में मुसलमान बड़ी ही तंगी, माश की तंगी में थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने सुफा वालों में 70 आदमी ऐसे देखे जिनके पास चादर तक न थी, या तो फकत तहमत था या फकत कंबल जिसे उन्होंने गर्दन से बांध रखा था, जो किसी की आधी पिंडलियों तक पहुंचता और किसी के टखनों तक, जिसे वो अपने हाथ से समेटे रहते इस डर से कि कहीं इनका सतर खुल ना जाए। ये बुखारी की रवायत है। असहाबे सुफा कौन थे? वो जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा, जिन्होंने अपने फैमिलीज को, बच्चों को छोड़ा, जिन्होंने अपने मुल्क छोड़े और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आकर मस्जिद नबवी के पास जो चबूतरा था उस पर आकर उन्हें डेरे डाल लिए, और इल्म सीखते थे और सिखाते थे, और वो मुसलमानों की स्टैंडिंग आर्मी थी जो हर वक्त मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए तैयार रहती थी कि कहीं भी कोई जरूरत हो तो उनको भेज दिया जाए। वो थे असहाबे सुफा, है ना। तो ये थी उनकी मुआशी तंगियां। हजरत आयशा रजी अल्लाह ना खुद कहती हैं कि हम एक चांद देखते, फिर दूसरा चांद, फिर तीसरा चांद, दो दो महीने आपके घर आग नहीं जलती थी। एक चांद, दो चांद, तीन चांद का क्या मतलब है? एक महीना, फिर दूसरे महीने का चांद आता, फिर तीसरे का आता, यहां तक के घर में आग नहीं जलती थी। उर्वा ने कहा, खाला फिर तुम्हारी गुजर किस चीज पर होती थी? हजरत आयशा रजी अल्लाह ने फरमाया, उन्हीं दो काली चीजों पर, यानी खजूर और पानी पर। इतना जरूर था कि चंद अंसारी लोग आपके हमसाये थे जिनके पास बकरियां थी, वो और वो आपके लिए बकरियों का दूध तोहफे के तौर पर भेजा करते, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको भी पिलाते। ये बुखारी की रवायत है। और मस्जिद नबी में मेहमान आते, रसूल अल्लाह सबसे पहले अपने घर भेजते किसी को कि कोई खाने की चीज हो ना। एक दफा जब भेजा तो उस घर से हर बीवी के पास से ये पैगाम आया कि कुछ भी नहीं है ना। फिर आपने सहाबा से कहा, क्या मेरे सहाबा कौन है जो तुम में से इनको मेहमान बनाए? और फिर वो ऐसा किसी कोई ऐसे सहाबी नहीं उनको अपने घर लेकर गए जिनका फ्रिज भरा हुआ था और फ्रीजर भी भरा हुआ था और एक और फ्रीजर भी। हम तो ये कहते हैं ना, हमारा फ्रिज छोटा है, फ्रिज छोटे नहीं है, फ्रीजर भी फुल साइज है, फ्रिज भी फुल साइज है, फिर फ्रीजर भी है, और फिर दिल छोटे हो गए। यानी अब घर वसी हो गए और दिल छोटे हो गए। उस वक्त घर छोटे थे, खाने की चीजें थोड़ी थी, दिल बड़े उनके वसी थे। अब दस्तरखान वसी है पर दिल छोटे हैं। वो सहाबी कौन थे जो अपने घर लेकर गए? और अब ये नहीं था कि घर में खाना एक्स्ट्रा था तो ले गए, और बीवी से कहा कि तुम चिराग बुझा देना, चिराग बुझा देना बहाने से, और बच्चों को बहला फुसला कर सुला देना, और फिर मेहमान के सामने जो खाना रखा गया वो एक ही बंदे का बस खाना था, बच्चे भूखे सोए, खुद हाथ अंधेरे में चलाते रहे, और सुबह हुई तो कुरान में आयतें नाजिल हो गई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अपनी जातों पर, अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं, हाँ वो कितनी ही तंगी में क्यों ना हो। खसासा, भूख, इसको कहते हैं भूख, कि पूरी फैमिली भूखी है, खाना ही नहीं है, और आयतें नाजिल हो गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मेहमान नवाजी तो अल्लाह को बहुत पसंद आई। ये कौन से सहाबी थे? कौन से? उमर बिन अब्दुल अजीज तो सहाबी थे ही नहीं, है ना। ये कौन थे? ये उम्मे सुलेम रजी अल्लाह नो के शोहर थे, जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी मेहमान नवाजी तो अल्लाह को बहुत पसंद आई, तो बहुत भूखे रहते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो का एक दफा बड़ा खूबसूरत वाकया है। कहते हैं, बड़ी भूख लगी हुई थी, मुझे हजरत उमर मिले, मैंने इनसे कहा मुझे कुरान की सूरत दहर की फला आयत सुनाओ। कहते हैं कि मुझे उन्होंने वो आयत सुनाई, पढ़कर और घर चले गए। और इस आयत का तर्जमा क्या है कि वो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। कहते हैं कि अब मैं वहां से उठा और चला क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ने मुझे आयत सुनाई, समझाई और घर चले गए। और थोड़ी दूर आगे गया तो भूख से निढाल होकर गिर पड़ा, ओंधे मुंह गिरा। इतने में क्या देखता हूँ कि रसूल अल्लाह मेरे सरहाने खड़े हैं, आपने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे उठाया और पहचान गए कि भूख के मारे मेरा ये हाल है। आप मुझे घर ले गए और मेरे लिए दूध का प्याला लाने का हुक्म दिया। मैंने दूध पिया, फिर फरमाया अबू हुरैरा और पी, रज़ी अल्लाह अन्हु। मैंने और पिया, फिर फरमाया और पी। मैंने और पिया हत्ता कि मेरा पेट तन कर सीधा हो गया। फिर मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह से मिला और अपना हाल बयान किया और कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी भूख दूर करने के लिए ऐसे शख्स को भेज दिया जो आपसे इस बात के ज्यादा लायक थे। अल्लाह की कसम, मैंने आपसे जो आयत पढ़कर सुनाने को कहा था वो मुझे आपसे ज्यादा याद थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर उस वक्त मैं तुम्हें घर ले जाकर खाना खिलाता तो सुर्ख ऊंटों के मिलने से ज्यादा खुशी होती। बुखारी की रवायत है। उसका वो मतलब ही नहीं समझ सके। ये आयत सुनाने का मकसद यह है कि इस वक्त ये भूख की कैफियत में, वो समझे कि एक आयत पूछ रहे, बताइए, और चले गए। और बाज औकात ना बहुत से जो सफेद पोश लोग हैं ना, आज भी हमारी सोसाइटी सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हमसायों में, मुंह खोल कर नहीं कहते कि मेरी ये जरूरत और मजबूरी है। उनकी आंखों में झांकोगे तो तुम्हें उनकी जरूरत का एहसास होगा, और ये होना चाहिए। और वो फकीर जो हर दरवाजा नॉक करके अपने झोली को फैलाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेता है, उसकी निस्बत जो मांगते नहीं है और जरूरतमंद है उनको देने का अजर ज्यादा है, कि वो खुददार है, उनकी खुदी उनको इजाजत नहीं देती कि हाथ फैलाया जाए। इनको देने का लोगों ज्यादा अजर है। तो खौफ की आजमाइश और भूख की आजमाइश। और हम तो यहाँ पे कितने अच्छे से रह रहे हैं कनाडा में, किसी को 20 साल हुए, किसी को 30, किसी को 10, किसी को 3। पूछे कि आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, तो कहते सेट ही नहीं हुए अभी तक। वो प्यारे बच्चों और प्यारे लोगों, दुनिया सेट होने की जगह ही नहीं है। यही तो हमारी मुश्किल है कि हमने ये मुसाफिर खाना था इसको घर समझ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह के कंधे को हिलाया, शाने को हिलाया, और कहा कि ए अब्दुल्ला बिन उमर, दुनिया में इस तरह से रहे जैसे कि एक मुसाफिर, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करना, जब शाम हो जाए तो सुबह का मुंतजिर ना रहे, और जब सेहत हो तो बीमारी, यानी बीमारी से पहले सेहत जो है ना उसकी, उसका ख्याल कर, और सबसे बड़ी बात क्या कि जिंदगी में मौत की तैयारी कर ले। तो ये है कि भूख की आजमाइश अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। पर नक्सी मिनल अनवाली अमवाली वल अनफुस, और जानों के और मालों के नुकसान से भी आजमाया जाएगा। तो कैसे नुकसान होगा? मसलन मुसलमानों को जॉब फिर ना मिले। अभी हाल ही का वाकया है कि दाढ़ी की वजह से जो है वो कहा गया कि तुम दाढ़ी कटवा दो तो फिर तुम्हें जॉब हम दे देते हैं ना, और उन्होंने दाढ़ी कटवाने से इनकार कर दिया, जबकि कई महीनों से वो जॉब पे नहीं थे ना। तो आज भी जो है वो क्या है कि ये दौर अपने ब्राहिम की तलाश में है। आज भी हमारे इन घरों में ब्राहिम पाए जाते हैं, तभी तो जो है वो उम्मते मुस्लिमा की दुआएं कुछ कबूल हो रही हैं और कुछ बेहतर हैं। कुछ लोग हम में हैं अब आज भी जो नेक हैं, जिनकी बदौलत हमें रिज्क मिल रहा है और अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल हो रही हैं। जैसियत मजमू वैसे हम बहुत अब कमजोर हो गए हैं, बोधे हो गए हैं। हम जब बहरेन में थे तो वहां पे भी, यानी बहरीन जो एक इस्लामी मुल्क है, तो लॉ आ गया था कि दाढ़ियां कटवाए ना, तो इंजीनियर वगैरह मुख्तलिफ थे, तो एक जो कमतर दर्जे का आदमी था, जो वर्कर टाइप था फैक्ट्री में, उसने कहा कि वो दाढ़ी नहीं कटवाएगा, और उसने इनकार कर दिया। फिर उसको बहरीन से निकाल दिया गया। थोड़े ही अरसे में उसको खाना काबा के अंदर जॉब मिल गई। आप देखें कि जब जो है इंसान जंजीरों को तोड़ देता है, जब जाहिरी सहारे जो है उनको ठोकर मार देता है, तो क्या है कि फिर अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। तो असल क्या है? ईमान की जरूरत है। आज मुसलमान ले ऑफ है, आज मुसलमान जो है वो परेशान हाल हैं, आज उनकी जानों का नुकसान हो रहा है और उनके मालों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं मैं तो आजमा के रहूंगा, मुझे तो आजमाना ही है ना। हजरत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम 6 आदमी रसूल अल्लाह के साथ एक लड़ाई के लिए निकले और हमारे पास एक ही ऊंट था, 6 लोग निकले। हम होते तो हम क्या कहते, नहीं नहीं हम नहीं जा सकते, क्लास में आना है ना, तो कहते हैं कि जा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल होती है, कैसे जाएंगे, सवारी नहीं है, बसेस हैं, ट्रेनें हैं। जॉब करने के लिए क्या करते हैं लोग, कोई हर कुछ भी होता है, पैदल चलते हैं। वो जब मैं शुरू शुरू में, हम 98 में अमेरिका आए, तो हम न्यूयॉर्क में मिनहैटन में हम ठहरे हुए थे ना, तो मैं उठी सुबह तो हम देख रहे थे तो लोग भाग रहे थे, चाय का कप भी उनके हाथ में था और भाग रहे थे, बिल्कुल भाग रहे थे। मैंने कहा इनको क्या हो गया है, इनको क्या हो गया, ये भाग क्यों रहे हैं? वो सब्वे से निकल रहे थे तो भाग रहे थे, जो सब्वे की तरफ जा रहे थे वो भी भाग रहे थे। किसी के पास कॉफी थी, किसी के पास चाय थी, और वो मौज की तलब में भाग रहे थे। उनको हुआ कुछ नहीं था, उनको एक नशा था अपनी जॉब का और अपने मिशन का और काम का। दुनिया का इस मिशन के लिए भागे तो क्या मैं और आप अल्लाह की राह में नहीं भाग सकते? 9:30 क्लास शुरू होती है ना, हम कहते हैं बहुत जल्दी है, 10:30 नहीं हो सकती है ना? हालांकि इससे भी जल्दी हो सकती है कि टाइम बचाया जाए और टाइम सेव किया जाए, टाइम की ऑडिटिंग की जाए। लेकिन ये कब होगी? जब हम ये समझ लेंगे कि जिंदगी आजमाइश है, इम्तहान गाह है, और अल्लाह ताला हम सबका इम्तहान ले रहे हैं। हम यहाँ मजे करने, खाने पीने, सोने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, अल्लाह तो हमें आजमा रहा है। फिर इसी तरह से वो कहते हैं कि हम यानी क्या हुआ कि सवारी के लिए हम सब जब निकले तो एक ऊंट था और 6 लोग थे। हम बारी बारी इस पर सवार होते और चलते, हमारे पांव फट गए, और मेरे तो कहते हैं कि मेरे तो पांव फटकर नाखून भी गिर पड़े। इस हाल में हम पांव पर चीथड़े लपेट लेते, इसलिए इस लड़ाई का नाम गजवाए जातो रिका, चीथड़ों वाली लड़ाई पर गया। ये बुखारी की हदीस है, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह उसको रवायत करते हैं। तो आप बताइए कि कैसी उन्होंने कुर्बानियां की हैं, जान और माल का नुकसान, पांव जख्मी हो गए, नाखून उतर गए। हम कहते हैं हमारे हम हमारी कमर थक जाती है, कोई कहता है पांव सूज जाते हैं, कोई कहता है इतनी देर बैठना बर्दाश्त नहीं होता। तो असहाबे सुफा ने तो सुबह शाम इसी सफर में गुजार दी। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वस समारात, तो समारात भी क्या है कि आमदनियों का घाटा, तनख्वाह का कम होना। और आज ऐसा है कि इस्लाम लाने की वजह से बाज़ुकात वो उस असल जगह पे हम नहीं पहुंच पाते, या वो यानी आप जो है आपकी और दूसरे की डिग्री सेम है और आपको वो जॉब, वो जगह नहीं दी जाती, या वो डॉलर नहीं दिया जाता जो दूसरे को दिया जाता है। तो आमदनियों का घाटा, और उस जमाने में भी वो घाटा हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो मेहनत मजदूरी करते थे, और मजदूरी लेने का जब वक्त आता था वो कहते थे मोहम्मद का इनकार कर तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, तो कहते थे कि नहीं, है ना? कितने कितने दिन की उनको तनख्वाह, कितने कितने महीनों की नहीं दी जाती थी। और क्या क्या था कि सहाबा ये बात बताते हैं कि जब वो मक्का से निकले तो उनके भरे हुए घर थे जिन्होंने उनको छोड़ा ना, उन्होंने इमिग्रेशन की थी लेकिन डॉलर के लिए नहीं की थी, अमेरिकन बनने के लिए, ये कनाडा का बनने के लिए नहीं की थी। उन्होंने इमिग्रेशन किसके लिए की थी कि मदीना जब वो गए थे, मक्का को छोड़ा था, अपने घरों को छोड़ा था और अपनी तिजारत को छोड़ा था, तो अल्लाह के लिए छोड़ा था। उनमें और हम में कितना फर्क है ना, और बहुत कम है वो लोग जो खालिस इस काम के लिए आए। और मैं अक्सर इस पे सोचती हूँ, चलो अगर इस काम के लिए नहीं भी आए, हम तो इसलिए आए ना, लोग किस लिए आए कि बच्चों का फ्यूचर बन जाए, है ना? चलो हमें यहाँ की जब सिटीजन मिल जाएगी, हमें बहुत सी जगह का वीजा नहीं लेना पड़ेगा, जॉब अच्छी मिल जाएगी, तालीम अच्छी मिलेगी, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। अच्छा फ्यूचर तो आखिरत है ना सर। तो चलो आज ही ये नियत कर लेते हैं कि अब इस धरती में मूसा बनकर जिएंगे, अब फिरौन के आगे कलमा तौहीद जो है वो बुलंद करेंगे, और अब हमारा घर इस्लाम का किला बनेगा, और अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात जो है वो सीखेंगे और सिखाएंगे ना, ठीक है ना? और ये है असल चीज। वबशिर स्वाबरीन, ऐसे हालात में जो सबर करें तो उनको खुशखबरी दे देना। और ये खुशखबरी जो है किन लोगों को देनी है? सबर जो है वो कब करते हैं? सबर जो है वो सदमे की इब्तदा में करते हैं, इन द सदमतिल उला, जब कोई आजमाइश आती है उसके बिल्कुल स्टार्ट में जो सबर किया जाता है ना, उसको सबर कहते हैं। वरना फिर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ तो इंसान को सबर जो है वो आ ही जाता है ना? हम कहते हैं कि सबर आ जाएगा, तो वो जो बाद में आता है फिर तो वो सबर नहीं है। सबर असल में क्या है, जो जब मुसीबत पड़ी तो फौरन उस वक्त जो है वो सबर करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबर सदमे की इब्तदा में है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह कहते थे तकलीफों से हमारी आजमाइशें हुई तो हमने सबर किया, लेकिन जब नेमत और आसाइश मिली तो हम सबर ना कर सके। नेमत में सबर मुश्किल होता है क्योंकि वहां इंसान को कुदरत हासिल होती है, मसलन खाना ना होने की सूरत में भूखा ज्यादा सब्र कर लेता है, जब खाना सामने पड़ा हुआ होता है तो सब्र मुश्किल होता है, फिर जरूरत से ज्यादा लुक्मे खा लेते हैं कि फिर फर्ज नमाज भारी हो जाती है। रोजा खोलते वक्त अफ्तारी जब करते हैं इतना खा लेते हैं कि फिर उसके बाद तरावी मुश्किल हो जाती है, तो सब्र ना कर सके। इसी तरह जो है वो जो अहम बात है हमारे लिए क्या है कि सब्र तो करना है, जैसे कि करने का हक है। मुझे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का ये कॉल बहुत अच्छा लगता है। हजरत उमर रजी अल्लाह कहते थे कि जब मुझ पर कोई मुसीबत आती है मैं सोचता हूं कि मुसीबत का ताल्लुक मेरे दीन से नहीं दुनिया से है, दूसरी बात मैं ये सोचता हूं कि जो मुसीबत भी आई अल्लाह चाहता तो इससे बड़ी दे सकता था, शुक्र है अल्लाह तूने मुझे इतना आजमाया, इससे बड़ी आजमाइश नहीं दी। तीसरी बात वो कहते थे मुसीबत का सबर, मुसीबत पर सबर का अजर अल्लाह ताला के यहाँ नामाए अमाल में है, यानी अल्लाह ताला नामाए अमाल में अजर लिख देते हैं जो बहरहाल मुझे मिलेगा, मुसीबत तो वक्ती है गुजर जाएगी। कहा कि फिर इन सबर करने वालों को खुशखबरी दे दे, तो ये है खुशखबरी के अजर मिलेगा, अल्लाह की मैयत मिलेगी और अल्लाह ताला कहते हैं कि बगैर हिसाब के उनको जो है मैं अजर दूंगा। और कुरान मजीद में हमें ये बात भी मिलती है कि सबर का अजर जो है उसका कोई बदला ही नहीं है। और जैसे रोजा है, कहा कि रोजा खास मेरे लिए इसका मैं अजर दूंगा क्योंकि रोजा भी सबर है। फिर फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि ये वो लोग हैं कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है, अच्छा जब भी कोई मुसीबत आए, कोई चीज गुम हो जाए, कोई सुई गुम हो जाए, कोई जेवर गुम हो जाए, कोई किताब गुम हो जाए, कुछ भी गुम हो जाए, कहीं कांटा चुभ जाए, कोई तकलीफ हो, कोई मर जाए, कुछ भी हो, तो क्या पढ़ना चाहिए? पालू, क्या कहते हैं सब मिलकर पढ़े, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ हैं, अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो अब ये जबान से सिर्फ नहीं कहना बल्कि दिल से इस बात का कायल होना है कि जो चीज गुम हो गई अल्लाह ही ने दी थी, अल्लाह ही ने ले ली, और मुझे भी तो अल्लाह ही के पास जाना है ना। जो मर गया तो भी अल्लाह ही ने इमानत के तौर पे वो जो थी वो बहन भाई का रिश्ता या माँ बाप का या बच्चे का दिया था, अल्लाह ने ले लिया, तो मुझे भी तो अल्लाह ही की तरफ जो है ना वो जाना है। तो अल्लाह की चीज थी, अल्लाह के रास्ते में काम आ गई, तो अब मैं रोऊं क्यों, अब मैं वावेला या शोर जो है वो क्यों मचाऊं, और दुनिया में मुझे भी बहरहाल हमेशा नहीं रहना, देर या सवेर अल्लाह के पास जो है वो हाजिर होना है। तो क्या है कि बेहतर है कि मैं भी अल्लाह के रास्ते में जान लड़ाकर अल्लाह के पास जो है वो हाजिर हो जाऊं। तो लाख दर्जे बेहतर है कि इंसान अपने नफ्स की परवरिश करता रहे, उसकी ख्वाहिशात पूरी करता रहे, उसी की पूजा करता रहे, और बनिस्बत इसके कि फिर वो उसी पूजा करने में बीमारी या हादसे में फौत हो जाए, तो उससे बेहतर है कि वो अल्लाह की इबादत करते हुए और अल्लाह के रास्ते में जो है वो जान दे दे, है ना। उरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह की मिसाल है कि पाँव पर फोड़ा निकल आया और पाँव कटवाना पड़ा, वो ऐसा जहर सा था कि टांग का खतरा था, तबीबों ने मशवरा दिया कि पाँव कटवा लीजिए, पाँव कटवा लिया। लोग ताजियत के लिए आए तो कहने लगे शुक्र है अल्लाह का, दो हाथ और दो पाँव दिए थे, एक ही कटा है बाकी तीन तो बाकी हैं। इसी तरह जो है वो सबर के दर्जे हैं, तीन दर्जे हैं, और हम हर मुसीबत के मौके पर ना अपना जायजा लिया करें, किसी भी लिहाज से कोई भी आजमाइश, और दिन और रात हमें आजमाइशें आती है ना, बाज़ औक़ात हम इतने ढह जाते हैं कि फ़राइज़ अदा नहीं करते, खाना नहीं पकाते, दिल नहीं लगता किसी चीज में, सुकून नहीं मिलता, पता नहीं चलता है सहरा में चले जाएं कहाँ चले जाएं, फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, और यहाँ के लोग तो ज्यादातर कहते हैं डिप्रेशन में चले गए कि डिप्रेशन हो गया उसको ना, नहीं, हमें जो इलाज बताया जा रहा है सबर और नमाज है। मोमिन को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये डिप्रेशन की बीमारी तो काफरों की हो सकती है, ईमान लाने वालों की नहीं हो सकती। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते, हर हाल में उनके लिए भलाई है, मुसीबत आए तो वो सबर करता है खैर समेटता है, अगर कोई नेमत मिलती है तो शुक्र करता है तो भी खैर समेटता है। सबर के दर्जे क्या है, कम अज कम दर्जा यह है कि अल्लाह का शिकवा ना किया जाए, ये सबसे कम दर्जा है कि शिकवा ना करना। हम कहते हैं ना पढ़ा तो बहुत अच्छा था, जॉब भी शौहर की बड़ी अच्छी है, और वालदेन ने भी बड़ा देख सोच के बेटी को दिया, पर नसीब और किस्मत ऐसी कि अच्छी जॉब मिली ही ना, सारी अच्छी एजुकेशन के बाद और बाहर की डिग्रियों के बाद अच्छी जॉब मिली ही ना, है ना। तो इंसान कोसता रहता है तो कम से कम दर्जा के शिकवा ना करना कि मुझे क्यों ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे क्यों शुगर हो गई, मुझे क्यों कमर दर्द की बीमारी हो गई, मैं क्यों नहीं बैठ सकती। तो शिकवा करते रहना। या बच्चे नहीं किसी को अल्लाह ताला ने दिए, औलाद नहीं है तो शिकवा कि अल्लाह ताला तूने मुझे क्यों ना दिया। और जिनको दिए तो वो कहते हैं कि अल्लाह किस मुसीबत में डाल दिया, ना होते तो शायद अच्छा ही था, बड़ी मुसीबत में है ना। और जो बेटी जिनकी शादियां बेटियों की नहीं है वो परेशान बैठे हैं कि या अल्लाह को भेज रिश्ता, जिन्होंने कर लिया वो कहते हैं कि कंवारी ज्यादा बेहतर थी, कंवारी खा रही थी रोटी और जो जिसकी शादी हो गई है वो बोटियां तोड़ रही है, बोटियां तोड़ रही है ना। तो शिकवा, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जिस हाल में अल्लाह रखे। दूसरा क्या है कि राजी हो जाना, ये सबर से आला मकाम है। जो भी मुसीबत आजमाइश आई थी उस पर राजी हो जाए, तूने जो कुछ मेरी किस्मत नसीब में लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूं। तीसरा क्या है, मुसीबत पर शुक्र करना, ये मकाम रजा से भी आला है कि उस पर इंसान जो है वो शुक्र करे। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, और पता है वाकई लोगों ने इस पर अमल करके दिखाया। अब्दुल्ला बिन मुतरिफ जो है, क्या पता चलता है, फौत हो गए तो इनके बाप मुतरिफ बड़े अच्छे कपड़े पहनकर सर पर तेल लगाकर निकले। लोग नाराज हुए, कहने लगे गजब है बेटा अब्दुल्ला जैसा फौत हो जाए तुम इस तरह के कपड़े पहनकर और तेल लगाकर निकलो। तो कहा कि मैं इस पर अपनी हालत की कमजोरी क्यों जाहिर करूं, हालांकि मेरे रब ने मुझसे तीन चीजों का वादा किया है और फिर इनमें से हर चीज मुझे दुनिया माफिया से ज्यादा प्यारी है। और फिर उन्होंने क्या पढ़ा, यही आयत 157 की तिलावत की, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो तीन चीजें क्या है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा वउलाइका हुमुल मुहतदून। नंबर वन, सलावात है उनके लिए, अल्लाह ताला की तरफ से उन पर नवाजिशें हैं। वह रहमा और रहमत है, रहमतें हैं। तीसरी बात यह, हदायत पाने वाले हैं। उन्होंने यह आयत तिलावत की और फिर मजीद कहा, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसके देने के बदले मुझे आखरत में पानी की एक सुराही मिल जाए तो ये तो ना चाहूं कि वो मुझसे दुनिया में ले ली जाए। तो ये है बात। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक बेटा अब्दुल अब्दुल मलिक फौत हुआ तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने उनको दफन किया, कब्र पर मट्टी डाली, फिर खड़े हो गए, लोगों ने आपको घेर लिया ताजियत के लिए। तो आपने फरमाया है मेरे बेटे अल्लाह तुझ पर रहमत करे, तू अपने बाप के लिए बड़ा नेक था और जब से तू पैदा हुआ मैं आज तक तुझसे खुश रहा और अब अल्लाह की कसम मैं इससे भी ज्यादा खुश हूं कि तेरे मरने की वजह से मुझसे मुझे अल्लाह ताला से अजर और सवाब की उम्मीद है। उनके सामने ना आयतें जिंदा थी, जो सहाबा और जो थे वो ताबेईन थे और तबा ताबेईन और जो नेक लोग गुजरे उनके सामने आयतें जिंदा, कुरान की आयतें जिंदा बनकर आती थी। वो कुरान की तिलावत का हक अदा करते थे, उस पर अमल करते थे। और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला तूने मुझसे मुझे क्यों इस आजमाइश में डाला ना। आपा जी हमीदा बेगम जो है बड़ी नेक औरत गुजरी हैं और इनको इनके पेट बड़ा बड़ा हो गया था और उसमें पानी भर गया था, कई दफा उनके पेट से पानी निकाला जाता। जब भी लोग उनकी खैरियत पूछते तो कहती अल्हम्दुलिल्लाह, इनका तकिया कलाम था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शिकवा शिकायत ना करती, कहती कहीं अल्लाह मुझसे ना नाराज ना हो जाए, अल्लाह की कहीं ना शुक्री ना हो जाए। तो वाकई जो है वो कुछ लोग जो है वो सब्र की तस्वीर बन जाते हैं। तो आइए हम भी सब्र करें जैसे कि सब्र करने का हक है। जो भी अल्लाह ने दिया है, जिस भी हाल में रखा है, ये मत भूलें कि दुनिया इम्तहान का है, दुनिया आजमाइश का है, मेरा इम्तहान हो रहा है और अल्लाह ने जरूर इम्तहान लेना है। और जब आजमाइश आए तो ऐसा ना हो कि आजमाइश तो आ गई और सब्र ना करूं तो अजर से भी महरूम हो जाऊं, तो ये दोहरी आजमाइश हो जाएगी। जब मैं सब्र करूंगी तो फिर क्या है कि अजर मिलेगा। तो ये सब्र इंफरादी तौर पर भी करना है, इज्तमाही तौर पर भी करना है। इंफरादी तौर पर जो हम सबको जो जो घरों में मसाइल है, और इज्तमाही तौर पर क्या है कि बहसियत उम्मत मुस्लिमा सबर करना है ताकि मुसलमान के जो हालात है उसे मुसलमान निकल सके। फिर इसके बाद जो है, यानी इस बात पर तो जो दिलाने के साथ साथ अल्लाह ताला जो है ये बात बताते हैं कि सफा और मरवा हज और उम्रे के दो अहम अरकान हैं, उनकी तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है। क्योंकि आप देख लें बात शुरू हुई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि उन्होंने खाना काबा की जो है वो बुनियादें रखी, फिर उन्होंने दुआ मांगी, फिर अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, फिर इमाम बनाया मुत्तकियों का नेक, और फिर ये कि खाना काबा जो है वो उम्मते मुस्लिमा के लिए किबला मुकरर हुआ, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैसियत रसूल के एक नेमत का मिलना है ना, तो फिर अब जो है वो हज और उम्रे की जो सही तरीका है उसकी बात हो रही है। तो बात क्या है कि इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि बेशक यकीनन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता बितमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ बिहिमा, जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उमरा करे तो इसके लिए कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही कर लिया करे। वमन ततवा खैरन फइन अल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो बरजा रगबत कोई भलाई का काम करेगा अल्लाह को इसका इल्म है और वो इसकी कदर करने वाला है। तो सफा और मरवा खाना काबा के नजदीक दो पहाड़ियां हैं जिनके दरमियान 7 चक्कर लगाना हज और उम्रे के मनासिक में से है, हज और उम्रे के तौर तरीकों में से है, और ये वो तौर तरीके थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह ताला ने सिखाए थे, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। बाद के जमाने में जब मुशरिकाना जाहिलियत फैल गई तो मुशरिकों ने सफा पर असाफ अलिफ सीन अलिफ असा फा असाफ का बुत बनाकर रख दिया, और मरवा पर नाइला का, और इनके गिर्द वो तवाफ करने लगे। तो अब यही वजह थी कि मुसलमानों के दिलों में ये सवाल खटकने लगा कि आया सफा और मरवा के दरमियान सही करना हज के मनासिक में से है या ये कि मुशरिकाना दौर की इजाद है। था तो वो हज के तौर तरीकों में से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए तौर तरीकों में से। सही हम क्यों करते हैं? बीबी हाजरा की याद में, और बीबी हाजरा के अमल को अल्लाह ने कितनी कबूलियत बख्शी। मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ कि जब उनका शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको एक रेगजार में, एक रेगिस्तान में, जहां सब्जा न था, जहां दाना न था, जहां पानी न था, जहां चरिंद और परिंद कुछ भी न था, जब वो उनको छोड़कर चले तो पूछ रही हैं कि आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश, फिर पूछा, फिर खामोश, फिर तीसरी दफा कहती हैं कि आपने अल्लाह आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो कहते हैं कि हाँ, इशारा करते हैं कि हाँ, कहती हैं अच्छा, फिर मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा ना। अकेली औरत, छोटा सा बच्चा, कोई भी नहीं है ना, चंद वो खजूरें और पानी का मशकीजा, थोड़े दिनों में सब खत्म हो जाता है। फिर उस बच्चे का बिलकना, उसका रोना, और आपका सफा और मरवा की पहाड़ियों पर भागना, एक पहाड़ी की तरफ दौड़ती हुई ऊंचाई पर, और आप सोचे पत्थर पथरीला इलाका, आज वाला सफा और मरवा वो आज वाली मस्जिद हराम नहीं है। आज क्या है? एसी है, आज क्या है? ठंडक है, पानी आबे जमजम जगह जगह पड़ा है, गिलास है, हवा ठंडी आती है, और जब चलते हैं तो चढ़ा नहीं जाता है ना, उन पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ा नहीं जाता, थोड़ी थोड़ी निशानियां उनकी अभी बाकी रह गई हैं। पहले जब किया था, बहुत पहले 70s में जब उमरा किया था तो उस वक्त ज्यादा थी, और फिर जो है 90s में किया तो और भी थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ और बिल्कुल ही बहुत मामूली निशानियां रह गई हैं। अब आप देखें कि उसमें क्या है कि हमें लगता है कि कब कितना चक्कर, हम चक्कर ही गिन रहे होते हैं, अभी तक दूसरा हुआ है कि तीसरा हुआ है, चौथा हुआ है कि पांचवा हुआ है। भूख लगी हुई होती है, प्यास की शिद्दत होती है, जिस्म चल नहीं रहा होता, बड़े शौक से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े एहतमाम के साथ हम जाते हैं, है ना? और आप सोचिए कि इतने अच्छे मौसम में, इतनी सहूलतों के साथ, साथ ही रेस्टोरेंट होते हैं, फौरन ही वहां से फारग हुए तो खाने के इंतजाम है, और फिर हम सही करते हैं ना। लेकिन उन्होंने सही कैसे की थी ना, और अल्लाह को उनकी ये अतात, उनका ये दौड़ना, उनका ये भागना इतना पसंद आया। मैं अक्सर ये बात कहा करती हूं कि औरतें तो औरतें, औरतों को छोड़ें, मर्दों का भी हज और उमरा मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो बीबी हाजरा के नक्शे कदम पर चलते हुए सही नहीं करते। अल्लाह ताला ने एक औरत को इतना मकाम दिया, उसके अमल को इतनी कबूलियत बख्शी, तो जब इखलास होता है, जब अल्लाह की रजा होती है, तो अल्लाह ऐसे कबूलियत बख्शा ही करता है। तो अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि तुम सफा और मरवा जो है इस पर अगर सही कर लो, ये अल्लाह की निशानियों में से है, तो जो शख्स भी बैतुल्ला का हज या उमरा करे तो इसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही कर लिया करे। तो क्योंकि हजरत आसिम बिन सुलेमान कहते हैं कि मैंने अंस बिन मालिक से इस आयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इब्तदाए इस्लाम में हमने इसे जाहिलियत की रस्म समझा सही को, लिहाजा उसे छोड़ दिया, तब ये आयत नाजिल हुई। ये बुखारी की रवायत है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है। हशाम बिन उर्वा अपने बाप से रवायत करते हैं कि मैंने हजरत आयशा से रजी अल्लाह ने से पूछा कि जब मैं अभी कमसिन था कि अल्लाह ताला के इस कौल इन सफा वल मरवा से तो ये मालूम होता है कि अगर कोई शख्स सफा और मरवा का तवाफ ना करे तब भी कोई कबाहत नहीं, ये है ना कि इन सफा वल मरवा का मिन शाइर अल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है सफा और मरवा, जो कोई हज और उमरे का इरादा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, यानी कर ले तो अच्छा है ना करे, है ना। तो ऐसे महसूस होता है ना जुमले से कि उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो तवाफ कर लिया करे इन दोनों का। तो उनको ये लगा कि अगर ना भी करे तो कोई कबाहत नहीं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ने जवाब दिया इसका मतलब ये नहीं, अगर ये मतलब होता तो अल्लाह यूं फरमाते कि अगर इनका तवाफ ना करे तो कोई गुनाह की बात नहीं। ये आयत अंसार के हक में उतरी, मुहालफ एहराम में मनात का नाम पुकारते थे, बुत था, और ये बुत तदीर के मकाम पर नसब था। अंसार इसी वजह से सफा मरवा का तवाफ बुरा समझते थे क्योंकि उनका बुत जो था यहाँ नहीं था, उनका बुत दूर था। जब वो इस्लाम ले आए तो उसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह से पूछा, तब ये आयत नाजिल हुई। ये बुखारी की रवायत है। तो अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो कोई भी खुशी से भलाई का काम करेगा तो अल्लाह ताला जो है उसको इसका इल्म है, यानी दिली रगबत के साथ करना, अल्लाह की रजा के लिए करना, तो अल्लाह तुम्हारे अमलों का बहुत कदरदान है, बहुत उनको कबूल करने वाला है ना। फिर फरमाया इन अल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं जो हमने नाजिल किया है बय्यिनात में से और हुदा में से, यानी अल्लाह ताला की नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हदायात को छुपाते हैं, मिन बादी मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, जबकि हमने इन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर दिया है। हम तो बयान कर चुके कि एक इंसानियत इससे फायदा उठाए और वो लोग उसको छुपाते हैं। यकीन जानो अल्लाह भी इन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी इन पर लानत भेजते हैं। तो यहां कौन लोग मुराद हैं? इस आयत से मुराद उलमा, मशाइख, वाइज और वो मुसन्नफीन हैं, वो ऐसे हजरात हैं जो अल्लाह के अहकामात और हदायात को छुपाएं। और जब उलमा जो है वो इल्म को फैलाना छोड़ दें, जब वाइज बास करना छोड़ दें, जब मशायख और मुफ्ती सही फतवे देना छोड़ दें, तो क्या होता है? सोसाइटी में फसाद पैदा होता है, फिर गुमराही आती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बदतरीन किस्म के मुजरिम हैं। और क्या होगा कि इन पर जो है वो अल्लाह की तरफ से भी लानत है, ये रहमत से महरूम है अल्लाह की, और बल्कि क्या है कि जितने लानत करने वाले हैं उन सब की तरफ से इन पर जो है वो लानत है। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि लोग कहते हैं अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करता है, हालांकि असल बात यह है अगर किताब अल्लाह में ये दो आयतें ना होती, ये आयत 159 और 160 ये वाली जो अभी पढ़ रहे हैं हम, तो कहते हैं तो मैं कोई हदीस बयान न करता। समझ आई बात की? तो ये बुखारी की रवायत है कि मैं क्यों ये हदीसें बयान करता हूं कि मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह कहते हैं कि मैंने सूरत बकरा में ये दो आयतें जो पढ़ी है ना ये मुझे बैठने नहीं देती, इसलिए जो हदीसें मैंने रसूल अल्लाह से सुनी और मैं उनको जो है वो बयान करता हूं, और वो बहुत बड़े हदीस के रावी थे। तो हमारे लिए यहां से अमल के लिए फिर सारी जो ऐसे लोग जो कि सोसाइटी के अंदर जो हैं जिनका बड़ा मकाम है और जो उस्ताद हैं या जो उलमा हैं जो मशायख हैं जो फतवा देने वाले हैं, तो उनका फिर क्या मामला होना चाहिए? उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो हैं जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको जाहिर करें और इल्मे दीन जो है उसको फैलाएं, छुपाएं नहीं, छुपाना हराम है। इसी तरह यानी यहाँ पे अल्लाह ने लानत क्यों की? क्योंकि अहले किताब जो थे वो अल्लाह की आयात को छुपा रहे थे। कैसे छुपा रहे थे उनके उलमा? क्योंकि उन्होंने पढ़ा था अपनी किताब में कि एक नबी आने वाला है, उन्होंने उसका इनकार किया, उनके उनके पास किताब होगी उसका इनकार किया, फिर किबले का इनकार किया है ना। तो ये सारे जब इनकार जो है जमा हो गए, तो उन्होंने जब बैयनात और अलहुदा का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने भी उन पर लानत कर दी। तो वो भी मुराद हैं। और ये आयत आम मानी में भी है कि हर उल्मा जैसे कोई मसला है बयान करने वाला तो उसको नहीं बयान करते कि लोग क्या कहेंगे, या बाज औकात बाज लोग कहते हैं कि हमारी जो चौधराहट है वो खत्म हो जाएगी, या लोग मानेंगे नहीं, सही बात बता दी, तो ये चीज जो है ये क्या है, ये हराम है। और अल्लाह ताला भी लानत करते हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लानत करने तमाम दुनिया भी उन पर जो है वो लानत करती है। तो जिस तरह उम्मत का दुनिया की इमामत के लिए चुना जाना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से लानत होना ये अल्लाह की सबसे बड़ी सजा है। जिस कौम को ये सजा दी जाती है तो दुनिया में उसको हदायत की तौफीक नहीं रहती, वो इमामत के मनसब से महरूम होकर जलीलो ख्वार हो जाती है, और आखरत में भी उसके लिए अब भी अजाब है। तो ये हक पोशी करना, कितमाने हक करना, अल्लाह की हदायत के निशानात को गायब करना, और अवाम को फसाद फिल अर्ज में मुब्तिला करना, ये अल्लाह के अजाब को दावत देना है। तो क्या कहा जा रहा है कि फिर सबकी तरफ से उन पर जो है वो लानत है। तो क्या करना चाहिए, अब अगली आयत में इसका इलाज बताया जा रहा है, इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा कर लें। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो अपने जो हक छुपा रहे हैं उसको जाहिर करना शुरू कर दें। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें जो है वो इल्म फैलाना चाहिए। हमने जो है वो किताब का हक जो था वो क्या पढ़ा था कि उसको छुपाया ना जाए, जाहिर किया जाए, जो इल्म सीख रहे हैं कुरान का उसको फैलाया जाए, आम किया जाए, जैसे जैसे जो जो तरीके हो सकते हैं उसको आम करने के उसको आम करना चाहिए, और यानी लौट आए। दूसरी बात क्या है, वह असलहू, और इसलाह कर लें। अब सिर्फ तौबा ही काफी नहीं है, बल्कि क्या है कि हक को छुपाने से जो सोसाइटी में बिगाड़ हुआ था उसकी इसलाह भी करनी होगी, अपनी गलती का एतराफ भी करना होगा, तो अल्लाह फिर तौबा जो है वो कबूल करेगा। मसलन अगर कोई किताब लिखता है, किताब में वो रसूल अल्लाह के खिलाफ बातें लिख देता है, और वो किताब की बहुत पब्लिशिंग होती है, और बड़े पैमाने पर वो शाया होती है, और बहुत से लोग उससे गुमराह होते हैं, तो इसी तरह तफसीर की किताब में ऐसी बात लिख दी जाए, या हदीस की किताबों में, या आम इस्लामिक लिटरेचर में गलत किस्म के अकायद फैला दिए जाएं, और कभी ख्याल आए कि ये मैंने गलत काम किया है, तो फिर क्या है कि सिर्फ जो है खाली अब तौबा काबिले कबूल नहीं है, जब तक के उसके उस अमल से जितने मनफी असरात पैदा हुए हैं ना उनको मिटाया ना जाए, इसलाह करनी होगी। वो जो मुल्हदाना ख्यालात है ना, अब दोबारा उनको खत्म करने के लिए फिर किताबें शाया की जाए, फिर उसकी पब्लिसिटी की जाए कि नहीं वो बात गलत ही, सही बात जो है वो ये है, ताकि तरदीद की जाए और इसलाह हो, तब उम्मीद है कि तौबा कबूल होने की तवक्को है। तीसरी है वह बैयानू, और वो उसको बयान करने लगे, खोल खोल कर बयान करने लगे। फाउलाइका तुबू अलैहिम, तो अल्लाह इनकी तरफ जो है वो मुतवज्जो होगा, अल्लाह इनको माफ कर देगा। वह अनतवाबुर रहीम, और अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूं। तो इल्म फैलाना चाहिए, इल्म छुपाना नहीं चाहिए। फिर फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह, जिन लोगों ने कुफर का रवैया अख्तियार किया, यानी कुफर को छुपाया। एक कुफर क्या है कि इंसान सिरे से अल्लाह ही को ना माने, अल्लाह ही को नहीं माना कि अल्लाह मालिक है या माबूद है, या अल्लाह के अहकामात जो है ना उसको मानना है, तो ये भी कुफर है। दूसरा कुफर क्या है कि अल्लाह के अहकामात को तो माने, लेकिन ये है कि सबको ना माने, कुछ को माने और कुछ को कुछ का इनकार कर दे, ये भी कुफर की किस्म है। फिर क्या कुफर है कि कुरान को तो माना जाए, हदीस का इनकार कर दिया जाए, ये भी कुफर है कि पैगंबरों का वास्ता जो है ना उसको खत्म कर देना। फिर ये भी कुफर है कि पैगंबरों के दरमियान तफरीक करना। फिर ये कि पैगंबरों की कोई बातें तो मानना और कुछ ना मानना, आज हदीस के मुनकर भी पैदा हो रहे हैं ना, तो ये बात भी कुफर है। फिर इसी तरह से जो है वो ये है कि इल्मी तौर पे, थ्योरी के तौर पे तो माना जाए, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ना माना जाए, अमलन जो है वो अल्लाह के अहकामात को, रसूल अल्लाह की सुन्नत को मानने से इनकार करे दीदा दानिश्ता, और वो कहे कि नहीं इससे जो है ना तरक्की नहीं होती, और दुनिया में चल नहीं सकते, और फिर ये कि हम इस तरह सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये भी कुफर की किस्में हैं सारी की सारी। कल जिसका ऐलान किया था कोहे सफा पर आका ने, आज भी वो सच्चाई लोगों सबसे बड़ी सच्चाई है। तो जो लोग इनकार करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कुफर की हालत में ही उन्होंने जान दे दी, इन पर अल्लाह की भी लानत है, फिर फरिश्तों की भी और तमाम इंसानों की लानत है। अजमाइन यानी जितने भी इंसान हैं सब की तरफ से उन पर लानत है। सब इंसानों से मुराद क्या है, कहते हैं कि दुनिया की हर चीज और हर मखलूक फिर इन पर लानत करती है, यहां तक कि जानवर और हशरातुल अर्द भी उन पर लानत करते हैं उनकी बदअमाली की वजह से, क्योंकि मखलूकात को नुकसान पहुंचता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुय्यन शख्स पर लानत क्या है कि तमाम जमीन पर चलने वाले जानवर भी उस पर जो है ना वो लानत करते हैं। तो हम किसी शख्स पर लानत नहीं कर सकते जब तक कि उसके कुफर पर मरने का यकीन ना हो जाए। और हमें क्या पता कि कोई कुफर पर मरा या ईमान की हालत में मरा, तो हमें आम तौर पे किसी को लान तान नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सही मानों में कुफर में मरे तो अल्लाह और फरिश्ते और तमाम जानदार चरिंद परिंद भी उस पर और इंसान जो है अल्लाह ताला की तरफ से कह रहे हैं अल्लाह तो उन पर लानत है, और इसी में खालिदीन फीहा, इसी में वो हमेशा रहेंगे। ला युखफ्फफु अनहुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून, ना तो उनकी सजा में कोई कमी होगी और ना उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत जो है वो दी जाएगी। कि लानत का मामला इतना शदीद है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब इनको जो सजा दी जाएगी उसमें वो हमेशा रहेंगे और उसके अंदर जो है ना तो कोई कमी की जाएगी और ना ही उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी कि वो दुनिया में फिर भेजे जाएं और वो अल्लाह से माफी मांगे और फिर अल्लाह ताला जो है उनको जो है ना माफ कर दे। तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल करने की तौफीक दे। और अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे बनी इसराइल जो है वो जलीलो ख्वार किए गए, और हॉलोकास्ट का वाकया भी आपको पता होगा ना, किसने किया था, ये हिटलर ने किया था ना, तो जो यहूदियों पे जुल्म सितम हुआ था, हम उसको देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आज मुसलमानों के हालात भी देख ले। तो अगर बचना चाहते हैं तो क्या है कि फिर से अपने फर्ज को अदा करना और फिर से अच्छे मुसलमान बनना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।